साहब को मेरे ये भी सिस्टर है क्या वैसे किसी को चाकू को मार दें तो उसको किससे प्रेम प्राप्त हो जाए, तो किससे प्रेम प्राप्त करने की बड़ी सरल विधि है। अगर हाँ अगर ये चाबुक मार दें किसी को तो किससे प्रेम प्राप्त हो जाए, लेकिन किसी को चाबुक मारते नहीं थे, बहुत ही कोई भाग्यशाली हो उसी को चाबुक मारेंगे, है ना। तो ये मत सोचना कि चाबुक मारते हैं तो भाई तो हाँ बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। चाबुक नहीं मारते थे किसी को, अगर किसी को चाबुक मारते तो किससे प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इतना जो है मतलब सौभाग्य, किसका सौभाग्य है जिसको चाबुक मारे। तो श्रीनिवास आचार्य को इन्होंने तीन चाबुक मारे थे और तीन चाबुक में उनको जो है पूर्ण कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया था, है ना। तो ये जो है मतलब विशेषता। और दूसरी विशेषता इन्होंने बताई कि किसी को प्रणाम करते थे अगर इनके धरातल से ऊपर ना हो तो मर जाएगा, किसी को प्रणाम करें, है ना। तो नित्यानंद प्रभु के जो है सात पुत्र मर गए, ये प्रणाम करते थे और बच्चा मर जाता था। नित्यानंद प्रभु के घर में जब पुत्र उत्पन्न होता था तो ये आते थे और उस पुत्र को प्रणाम करते थे और जैसे प्रणाम करते थे तो मर जाता था। तो ऐसे सात बार पुत्र की जो है पुत्र का देहांत हुआ। तो अब आठवीं संतान जो हुए नित्यानंद प्रभु के वो हुए वीरचंद्र प्रभु, या वीरभद्र भी कहा जाता है, वीरचंद्र भी कहा जाता है, उनका जन्म हुआ। अब इस बात सबको बड़ी चिंता हुई, खड़दहा में नित्यानंद प्रभु रहते थे तो पूरे गांव के खड़दहा के जितने भी लोग थे सब चिंतित हो गए कि भाई ये ना आए, अभिराम ठाकुर ना आए। हाँ तो बड़ी चिंता हुई कि अब बालक की रक्षा करनी है, ये आकर के प्रणाम करेंगे और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो इनको बुलाया गया, इनको पता चला हाँ कि नित्यानंद प्रभु के घर में पुत्र का जन्म हुआ है, और फिर विचार करने लगे कि मुझे तो बुलाया नहीं। फिर सोचा कि मुझे बुलाया नहीं है, मैं तो ग्वाला हूँ, मैं तो ग्वाला हूँ, तो ग्वाले तो बिना बुलाए भी जाते हैं। तो चले, अब चले गए तो गांव जो है गंगा के उस पार था, खड़दहा गंगा के उस पार था। तो गंगा के उस पार आए गंगा पार करने के लिए, तो नाविकों ने पूछा कि आप कौन हैं, बोले अभिराम ठाकुर। ओ अभिराम ठाकुर, अपने नाव डुबा दी, नहीं गंगा पार नहीं करेंगे आपको, अपनी नाव डुबा दी गंगा जी में उन्होंने, नहीं गंगा पार नहीं करेंगे आपको। तो अभिराम ठाकुर बोले कि तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं गंगा पार नहीं जा सकता, देखो मैं कैसे गंगा पार जाता हूँ। तो अपनी धोती डाली गंगा जी में और धोती के ऊपर बैठ गए और गंगा पार कर लिया। अब वहाँ पहुँचे खड़दहा में तो बड़ी चिंता होगी सबको, आ गए अभिराम ठाकुर आ गए, नित्यानंद प्रभु भी चिंतित हो गए, कुछ बोले नहीं, लेकिन सोचा कि चलो अभी जो है इनको भोजन करा दो पहले। तो इन्होंने कहा कि मुझे पता चला आपका पुत्र हुआ है, नित्यानंद प्रभु बोले कि पुत्र तो हुआ है, चलो अभी पहले भोजन तो करो। तो भोजन करने के लिए बैठा दिया, तो भोजन करने के लिए बैठे तो जितना भोजन था सब खा लिया। नित्यानंद प्रभु बोले क्या करते हो तुम, इतना भोजन खा लिया तुमने, अब तो जो है किसी को भोजन नहीं मिलेगा। तो बोले हम ग्वाले हैं, हम जितना खाए हैं क्या हमारे लिए मनाही है खाने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु बोले तुमने 300 आदमियों का भोजन खा लिया, अब बाकी लोग कैसे खाएंगे। तो ये बोले कि जितना भोजन बना था देखो सब रखा हुआ है। तो जब देखा सब जो मतलब रखा था, बड़ा आश्चर्य हुआ। अब बात चली पुत्र की, भाई पुत्र का जो है दर्शन कराओ। नित्यानंद प्रभु बोले क्यों जो है पुत्र का दर्शन करना चाहते हो, तुम सात पुत्रों को मार चुके हो, अब क्यों जो है तुम पुत्र का दर्शन करना चाहते हो। तो बोले कि नहीं नहीं, मेरा जो इरादा है वो केवल ये देखने का है कि आपका जो पुत्र है वो आपके ही धरातल का है कि नहीं है। तो ठीक है चलो, दिखाया पुत्र को। तो वीरचंद्र प्रभु को जो है उनकी माता जी जो है अपनी गोद में लेकर के आई, इन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम किया तो उस बच्चा ने जो है हंसा, कुछ नहीं हुआ, हंसने लगा। तो फिर दूसरी बार प्रणाम किया तो और हंसा, तीसरी बार प्रणाम किया तो और हंसा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बच्चा जो है आपके ही पुत्र होने योग्य है, मैं तो यही इसी परीक्षा के लिए आता हूँ। क्योंकि तो वीरचंद्र बहु छिरो दक्षाई विष्णु के अवतार है, तो विष्णु तत्व है, तो जो विष्णु तत्व को प्रणाम करेंगे तो जो है मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन जो विष्णु तत्व तो ना हो उसको प्रणाम करें, किसी जीव को प्रणाम करेंगे तो मर जाएगा। शालिग्राम शिला को प्रणाम करें अगर असली नहीं है तो फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ये जो है मतलब जांच करने का इनके पास ये तरीका था, असली नकली का, है ना। कोई अगर नकली है, अपने को भगवान कहता है कि मैं भगवान हूँ, भगवान नहीं है, वो प्रणाम करेंगे मर जाएगा। सब बहुत डरते थे कि बदमाश को भी बहुत डरते थे, हैं विशेष रूप से अपने को भगवान कहना पड़े, है ना। कोई कहे कि मैं भगवान हूँ, अच्छा तुम भगवान हो, है ठीक है मैं प्रणाम करता हूँ तुमको। तो भाग जाएगा, डर के बारे में भाग जाएगा कि भगवान नहीं। तो ये जो है मतलब उनकी विशेष शक्ति थी। तो आज उनका 13वां दिवस है, तो उनके 13वां दिवस में हमें विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। देखो उनके पास कितना अधिकार था, कितना अधिकार था भगवान के, चूंकि सखा है श्री रामा, सखा है ब्रजिला के, इतना अधिकार था कि जिस पर चाबक मार दे उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। तो कृष्ण स्वयं अपना प्रेम नहीं देते किसी को, लेकिन अपने भक्तों को जो इतना अधिकार देते हैं कि वे चाहे जिसको प्रेम दे। तो कृष्ण से ज्यादा इनके पास जो है अधिकार होता है भक्तों के पास। और कहीं तो हमने ये पढ़ा है, अब कहाँ तक सही है मैं नहीं जानता, कि गौर लीला में उन्होंने जन्म ही नहीं लिया, इन्होंने जन्म ही नहीं लिया। ब्रज लीला में जो श्री रामा थे तो उन्होंने शरीर भी नहीं छोड़ा था, वो ब्रज लीला में ब्रज में ही रहते थे। और नित्यानंद प्रभु जब मिले तो पहचान लिया, नित्यानंद प्रभु को पहचान लिया उन्होंने। और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अभी तो हमारे जो कनाई हैं वो जो है गौरांग के रूप में लीला कर रहे हैं मायापुर में, चलो मेरे साथ। तो ब्रज से ही जो है ये आ गए और शरीर जो है उन्होंने पर उस हिसाब से अपना बदल लिया। ये द्वापर युग का शरीर तो दूसरे प्रकार का होता है। तो कहीं पर ऐसा बताया गया कि ब्रज जिला में जो श्री रामा है उसी शरीर में रहे, एक दूसरा उन्होंने अपना विस्तार किया तो अभिराम भागवत के रूप में। जैसे बता रहे हैं कि उनका घर जो है मंदिर जैसा था, क्यों था, क्योंकि उनका शरीर दिव्य था, तो उन्होंने जन्म ही नहीं लिया, है ना। अब जो भी हो इसको मतलब खोजबीन करना पड़ेगा कि मतलब क्या सही है, इनके माता पिता का कोई नाम नहीं है। इसलिए हमारे वैष्णव कलेंडर में कहा आविर्भाव दिवस आता ही नहीं है, तिरुभाव दिवस आता है। तो गौर लीला में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, और ब्रज लीला में इन्होंने जन्म लिया था तो बीच में शरीर छोड़ा नहीं, जन्म नहीं, गौर लीला में शरीर छोड़ा। तो आज जो इन्होंने शरीर छोड़ा है बहुत ही विशेष कृपा का दिन है, आज तो उनकी जो है कृपा का द्वार खुला हुआ है। ऐसे दिनों में प्रभुपाल कहा करते थे कि हम डायरेक्ट कृपा प्राप्त कर सकते हैं ऐसे महात्माओं की, जब उनके आविर्भाव तिरुभाव के दिन होते हैं तो हम डायरेक्ट कृपा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वैसे तो गुरु परंपरा के द्वारा कृपा प्राप्त होती है। तो आज जो है विशेष रूप से इनकी कृपा का दिन है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या हमें प्रश्न कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। अभिराम ठाकुर वो जो है